रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष अग्नेश सापकोटा विरुद्ध दी गई जान मारने की मुकदमा में शिकायत पर अनुसंधान आगे बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट ने किया आदेश। आगामी वर्ष के बजट के क्रियान्वयन से आर्थिक गतिविधि में विस्तार, रोजगारी सृजना और पूर्वाधार परियोजनाएं निर्धारित समय पर ही सम्पन्न होगी। उप प्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल का विश्वास। सभामुख के पहल में हुए सत्तापक्ष और प्रतिपक्षी दल के बैठक के सहमति नहीं जुट पाने के बाद प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना साठ करके कल दोपहर तक के लिए हुई स्थगित। दलों में समावेशी होने पर ही राज्य का संरचना समावेशी हो सकता है, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा का कथन। और दक्षिण कोरिया में लिबरल सरकार राष्ट्रपति चुने गए ली जे म्याग मून सू ने मानी हार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा में आर्थिक वर्ष 2082-83 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान पर सामान्य विचार विमर्श शुरू हुई है। आज की बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान पर सामान्य विचार विमर्श प्रारंभ किया जाए के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बजट यथार्थपरक और कार्यान्वयन योग्य है। बैठक में अर्थमंत्री पौड़ेल ने कहा कि बजट के क्रियान्वयन से आर्थिक गतिविधि विस्तार होगी, निजी क्षेत्र में लगानी बढ़ेगी, रोजगारी का अवसर सृजना होगा, पूर्वाधार परियोजनाएं निर्धारित समय पर सम्पन्न होकर के आर्थिक वर्ष के अंत तक में 6% का आर्थिक वृद्धि हासिल होने की अनुमान की गई है। अर्थमंत्री पौड़ेल ने कहा कि बजट में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार का प्रस्ताव किया गया है और विकास के लिए वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापन करने के सोच विचार पर भी जोर दी गई है। इसी तरह प्रतिपक्ष के सांसदों ने कहा कि अपेक्षा अनुसार के बजट नहीं आ पाने के कारण जनता में निराशा पैदा हुआ है और सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि का क्रियान्वयन होने के हिसाब से नहीं हुई है। उन लोगों ने कहा कि बजट में पूंजीगत खर्च की ओर स्रोत का सुनिश्चितता नहीं है और लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल होने में असर पड़ सकता है। सांसद भूसाल ने कहा कि कृषि उत्पादन और बाजारीकरण क्षेत्र में अपेक्षाकृत बजट विनियोजन नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय सभा की दूसरी बैठक कल दोपहर 1:15 बजे बैठेगी। विजिट वीसा प्रकरण के विषय को लेकर अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा की बैठक आज भी नहीं हो पाई है। प्रतिनिधि सभा की बैठक सूचना साठ के कल दोपहर 1:15 बजे के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले आज दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई बैठक विजिट वीसा प्रकरण में गृहमंत्री रमेश लेखक के राजीनामा के विषय पर सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष अपनी अपनी अड़ान पर होने के कारण सूचना साठ करके 3:15 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। 3:15 बजे के लिए बुलाई गई बैठक भी नहीं होने के बाद पुनः सूचना साठ करके कल दोपहर 1 बजे के लिए समय का निर्धारण किया गया है। इसी बीच प्रतिनिधि सभा का गतिरोध अंत करने के संबंध में सभामुख देवराज घिमरे ने आज भी सत्तापक्षी और प्रतिपक्षी दल के प्रमुख और मुख्य सचेतकों के साथ विचार विमर्श किया था। बता दें कि सत्तापक्षीय दलों ने विजिट वीसा प्रकरण के विषय पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने कहा कि अनुसंधान कर रही है और गृह मंत्री लेखक के संबंध में कहीं भी शिकायत नहीं दर्ज हुई है, इसलिए राजीनामा नहीं देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष अग्नेश सापकोटा विरुद्ध दी गई जान मारने के संदर्भ में शिकायत पर अनुसंधान आगे बढ़ाने की आदेश दी है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत सहित न्यायाधीशों सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डॉ मनोज कुमार शर्मा और डॉ कुमार चुराल के इजलास से पूर्व सभामुख सापकोटा विरुद्ध कावरे के अर्जुन लामा के अपहरण और हत्या प्रकरण में अनुसंधान आगे बढ़ाने का आदेश किया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा ने कहा कि दलीय व्यवस्था में दल खुद समावेशी नहीं होने तक राज्य के अन्य संरचना समावेशी नहीं हो सकेगी। राष्ट्रीय समता दिवस तथा छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा के संदर्भ पर नेपाली कांग्रेस दलित समुदाय समन्वय तथा सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित कार्यक्रम में सभापति देउवा ने कहा कि निरंकुश शासन व्यवस्था में दलित समुदाय को भोगना पड़ा भेदभाव विरूद्ध आवाज उठाने वाली पहली पार्टी नेपाली कांग्रेस है। सभापति देउवा ने कहा कि विद्यमान जातीय भेदभाव और छुआछूत का अंत करने में पुनः स्थापित संसद से 2063 जेठ 21 गते के दिन नेपाल को छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा करने की संकल्प प्रस्ताव पारित हुए आज के दिन सामाजिक रूपांतरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल ने निर्यात वृद्धि करके राष्ट्र पूंजी का निर्माण, रोजगार वृद्धि और आयात प्रतिस्थापन के विषय पर विभिन्न सुझावों को सौंपा गया है। आज महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद प्रसाद घिमरे नेतृत्व के टोली ने प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री ओली को 7 सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपी है। सुझावों को ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री ओली ने महासंघ के नए नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी और पर्यटक वृद्धि जैसे विषयों को सरकार ने उच्च महत्व दिया है और निर्यात व्यवसायियों का उचित सुझावों के संबोधन का पहल की जाने की विश्वास भी दिलाई है। कर्णाली प्रदेश सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष 2082 और 83 का नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक किया है। आज कर्णाली प्रदेश सभा की बैठक में कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी इलाज के लिए अमेरिका गए हैं, इसलिए सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियां ने कर्णाली सरकार का नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सरकार ने हुलाक सेवा, गोरखा पत्र, राक्षसों और सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक तर्जुमा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय किया है। इसी जेठ 15 और 19 गते के मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि मूल्य अभिवृद्धि कर 27वीं संशोधन नियमावली 2082, अंतशुल्क 27वीं संशोधन नियमावली 2082 और भंसार 16वीं संशोधन नियमावली 2082 स्वीकृत करने और उसका सूचना राजपत्र में प्रकाशित करने के निर्णय की गई है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि विजिट वीसा प्रकरण के बारे में संसद में ही जवाब देंगे। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज की बैठक में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि समिति में जवाब देने से सभी सांसदों को जवाब मिल पाएगी, इसलिए संसद में ही जवाब देने की व्यवस्था मिला देने का समिति सदस्यों से आग्रह किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार की जीत से दक्षिण कोरिया में पिछले कई महीनों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल और का दौर थम गया है। इस वर्ष की शुरुआत में देश में मार्शल लॉ लगाने के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल को अप्रैल में पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद यह चुनाव कराया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बुधवार के आंकड़ों के अनुसार 99.2% मतों की गिनती हो चुकी है। ली जे म्या को 49.3% वोट मिले हैं। कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू को लगभग 42% वोट मिले। मून ने हार स्वीकार कर ली है और म्या को चुनाव जीतने के लिए बधाई दी है। दक्षिण कोरिया में मंगलवार को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। इसके बाद देश के प्रमुख टीवी चैनलों केबीएस, एमबीसी और एसबीएस द्वारा किए गए एक्जिट पोल में म्याक को 51% से ज्यादा मत मिलने का अनुमान लगाया गया था। पीपीपी उम्मीदवार मुन को करीब 39% वोट मिलने का अनुमान लगाया है। म्याग ग्योंगगी प्रांत के गवर्नर और सिंग्योगनाम शहर में मेयर रह चुके हैं। मुख्य कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष अग्निश सापकोटा विरुद्ध दी गई जान मारने की मुकदमा में शिकायत पर अनुसंधान आगे बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट ने किया आदेश। आगामी वर्ष के बजट के क्रियान्वयन से आर्थिक गतिविधि में विस्तार, रोजगार सृजना और पूर्वाधार परियोजनाएं निर्धारित समय पर ही संपन्न होगी। उप प्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल का विश्वास। सभामुख के पहल में हुए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी दल के बैठक के सहमति नहीं जुट पाने के बाद प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना साठ करके कल दोपहर तक के लिए हुई स्थगित। दलों में समावेशी होने पर ही राज्य का संरचना समावेशी हो सकता है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा का कथन और दक्षिण कोरिया में लिबरल सरकार राष्ट्रपति चुने गए ली जे म्याग मून सू ने मानी हार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।